दिन भर तारीख 18 अक्टूबर दिन रविवार, मैं अशोक कुमार। दिल्ली में एक नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोप में दो किशोर गिरफ्तार। महिला सुरक्षा पर केजरीवाल ने दी पीएम मोदी को चेतावनी।
प्रधानमंत्री जी समझ ले, मैं शीला दीक्षित नहीं हूँ, मैं चुप नहीं बैठने वाला। अगर दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हुई, अगर दिल्ली के अंदर बलात्कार होते रहे, प्रधानमंत्री जी को चैन से सोने नहीं देंगे हम लोग।
बात होगी राजकोट में चल रहे भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे की भी, जिससे पहले हार्दिक पटेल किए गए गिरफ्तार। मिस्र में संसदीय चुनाव और फैला उजियारा में आज की कड़ी मीराबाई पर।
अधर सुधारस मुरली राजत उर्वैजंती माल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल।
होगा और भी बहुत कुछ, पर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। दिल्ली पुलिस ने नांगलोई में नाबालिग बच्ची से सामूहिक बलात्कार के मामले में दो किशोरों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद खून से लथपथ दो साल की बच्ची पास के ही पार्क से मिली थी। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों किशोर 17 साल के बताए जा रहे हैं। उत्तरी फिलीपींस में चक्रवाती तूफान कोप्पू के कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं और हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। तूफान की वजह से अब तक एक व्यक्ति की मौत की खबर है। लुजोन द्वीप पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं के कारण भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि तूफान की धीमी गति के कारण इस क्षेत्र में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। भूस्खलन और बाढ़ की आशंका को देखते हुए विमान और नौका सेवा बंद कर दी गई है। क्षेत्र में कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। एक मछुआरे ने आर्नोल्ड पेस्टोन ने अपनी आपबीती सुनाई। तूफान की वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ है, इसकी वजह से हमारे पास भविष्य के लिए धान भी नहीं बचा है। दूसरा सवाल है इस साल की फसल का, जो खराब हो गई है। फसल खराब हो गई तो हम दूसरा खरीदने के लिए धान भी कहाँ से बेचें। ये थे आर्नोल्ड पेस्टोन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पटेल समुदाय के नेता हार्दिक पटेल की भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे को बाधित करने की चेतावनी के बाद गुजरात पुलिस ने उन्हें एहतियात के तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें आज दोपहर स्टेडियम की ओर जाने से रोका गया और फिर कुछ साथियों के साथ जामनगर राजकोट हाईवे पर गिरफ्तार कर लिया गया। राजकोट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे खेला जा रहा है। हार्दिक पटेल ने पटेलों के आरक्षण की मांग के समर्थन में इस मैच में बाधा डालने की धमकी दी थी, जिसके बाद सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। अमरीका ने कहा है कि सीरिया में हवाई हमलों में एक वरिष्ठ अलकायदा नेता की मौत हो गई है। पेंटागन से जारी एक बयान में कहा गया है कि मारा गया नेता सनाफी अल नस्र मूल रूप से सऊदी अरब का था, जो कि चरमपंथियों को पाकिस्तान से सीरिया तक पहुंचाने के इंतजाम करता था। बताया जाता है कि सनाफी अल नस्र अलकायदा के आर्थिक मामलों को भी देखता था। अमरीकी अधिकारियों ने कहा है कि सनाफी अल नस्र अलकायदा के सहयोगी खुरासान गुट का एक वरिष्ठ नेता था। जर्मन चांसलर एंगेला मर्कल यूरोप आने वाले प्रवासियों के संकट पर चर्चा करने के लिए तुर्की के दौरे पर हैं। एंगेला मर्कल ने तुर्की के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है। एंगेला मर्कल चाहती हैं कि तुर्की यूरोपियन यूनियन आने वाले प्रवासियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए ज्यादा कदम उठाए। इसके बदले में यूरोपीय नेता तुर्की को धन और कई तरह की छूट देने की पेशकश कर रहे हैं। इनमें तुर्की के नागरिकों के लिए वीजा फ्री आवाजाही की भी पेशकश शामिल है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी की हिंदी सेवा से कार्यक्रम दिन भर, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और उसकी मोबाइल साइट पर भी लाइव। आपके साथ मैं अशोक कुमार। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर बलात्कार को लेकर सुर्खियों में है। दो दिन पहले दो नाबालिग बच्चियों से बलात्कार के मामले सामने आए। एक मामला दिल्ली के नांगलोई इलाके का और दूसरा आनंद विहार इलाके का। पुलिस ने आज बताया कि नांगलोई में 2.5 साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में उसने दो किशोरों को गिरफ्तार किया है और दोनों की उम्र 17 साल के आसपास है। वहीं दूसरे मामले में 5 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और पुलिस इस सिलसिले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है। इन दोनों ही मामलों के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली में जंगल राज होने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार से मांग की है कि दिल्ली पुलिस का नियंत्रण उन्हें दे दिया जाए। रोहित जोशी की रिपोर्ट।
शुक्रवार को दिल्ली के नांगलोई और आनंद विहार इलाकों में दो नाबालिग बच्चियों के साथ हुए बलात्कार के बाद दिल्ली का राजनीतिक माहौल फिर से गर्मी पकड़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार और पुलिस पर आरोप लगाया है कि वे बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस मामले पर चर्चा के लिए अरविंद केजरीवाल और पुलिस अधिकारियों को एक बैठक के लिए बुलाया था। बैठक के बाद तल्ख तेवरों में केजरीवाल ने पुलिस का नियंत्रण साल भर के लिए दिल्ली सरकार को दिए जाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगर इस बीच भी हालात नहीं बदलते हैं तो फैसला वापस ले लिया जाए। केजरीवाल ने केंद्र सरकार को महिला सुरक्षा पर लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी भी दी है।
मैं एक बात साफ साफ कर देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी समझ ले मैं शीला दीक्षित नहीं हूं, मैं चुप नहीं बैठने वाला। अगर दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हुई, अगर दिल्ली के अंदर बलात्कार होते रहे, प्रधानमंत्री जी को चैन से सोने नहीं देंगे हम लोग।
दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पुलिस ने नांगलोई में नाबालिग बच्ची से सामूहिक बलात्कार के मामले में दो किशोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक एक लड़का 8वीं कक्षा में पढ़ता है और दूसरा 10वीं पास है और एक फैक्ट्री में काम करता है। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता राजेंद्र भगत ने बीबीसी को बताया कि ये दोनों ही बच्ची के पड़ोसी हैं।
दो जुवेनाइल जो है उनको अप्रीहेंड किया गया है, पड़ोस में वहीं के रहने वाले हैं आसपास के।
बलात्कार पीड़ित बच्ची की मां ने बताया कि उस दिन क्या हुआ था।
वो भी 2.5 साल की है और जैसे वो वहाँ पे डांस हो रहा था, उसका ध्यान बटा, वो डांस देखने के लिए बस 2-3 कदम गई है, तुरंत ही लाइट चली गई और लाइट जाते ही मेरी बेबी को उन लोगों ने उठा लिया। हम लोग उसकी थोड़ी देर बाद लाइट आई और हम अपनी बेबी को ढूंढने लग गए, लेकिन हमें मिली नहीं वो। और उसके बाद 3-4 घंटे के बाद वो हमें कहीं पार्क में मिली।
शुक्रवार को ये बच्ची खून से लथपथ हालत में नांगलोई में अपने घर के पास के ही एक पार्क में मिली थी। इसके अलावा शुक्रवार के ही दिन आनंद विहार में 5 साल की एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार का एक और मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने आनंद विहार पुलिस स्टेशन में प्रकाश रेवती और सीताराम नाम के 3 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
ये थी रोहित जोशी की रिपोर्ट। उधर शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि वो बलात्कार जैसे मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हैं। ऐसे ही आरोप कांग्रेस के नेता संजय झा भी लगाते हैं। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि कभी भाजपा और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हुए बलात्कार की घटना यानी 2012 की घटना को लेकर खूब राजनीतिक लाभ लिया था, लेकिन अब दोनों एक दूसरे पर आरोपों और प्रत्यारोपों का खेल खेलने में व्यस्त हैं। और कार्यक्रम में आगे बात करेंगे मिस्र की, जहां आज संसदीय चुनावों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन बात उससे पहले कर लेते हैं राजकोट में चल रहे भारत दक्षिण अफ्रीका मैच की। क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का इंतजार तो था ही, लेकिन ये मैच इसलिए भी सुर्खियों में है कि पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने इसमें बाधा डालने की धमकी दी थी। स्टेडियम के 1 किलोमीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लगाई हुई है। हार्दिक पटेल की धमकी को देखते हुए जिला प्रशासन ने शनिवार रात से ही मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी थी, लेकिन आज हार्दिक पटेल स्टेडियम पहुंचते उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के वक्त उन्होंने कहा कि वो मैच देखने आए हैं।
हम क्रिकेट मैच देखने आए, यहाँ विरोध करने नहीं आए। बहुत लोग आए सिर्फ हिंदुस्तान को जिताने के, उनके सपोर्ट में आए।
ये थे हार्दिक पटेल। वैसे मैच तो देखने की चीज है, रोकने की तो कतई नहीं है। मैच पर हमारे साथी आदेश गुप्त भी नजर बनाए हुए थे। तो आदेश जी, आपने अभी तक क्या क्या देखा बताइए।
जी देखिए, अगर राजकोट की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका ने आज टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और दक्षिण अफ्रीकी टीम ने 7 विकेट खोकर 270 रन बनाए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही क्विंटन डिकॉक की, जिन्होंने 103 रनों की शतकीय पारी खेली। ये उनका एक दिवसीय क्रिकेट में 7वां शतक था। वैसे भारत उनको बहुत पसंद आता है, क्योंकि जब भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका गई थी तो आप देखिए कि शुरुआती जो 3 वनडे थे उनमें तीनों में ही उन्होंने शतक जड़ा था। और यहाँ पर उन्होंने अपना शतक बनाने के लिए 118 गेंदों का सहारा लिया, जिसमें उनके 11 चौके और 1 छक्का शामिल था। उनके अलावा फेफ डु प्लेसिस ने भी 63 गेंदों पर 60 रनों की पारी खेली। डेविड मिलर को आज सलामी बल्लेबाज के रूप में उतारा गया, क्योंकि वो पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे, उन्होंने 33 रन बनाए। जबकि हाशिम आमला को आज थोड़ा बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजा गया, उनका जो डाउन था चेंज किया गया, वन डाउन खेलने आए वो केवल 5 रन बना सके। अब अगर भारतीय टीम की बात की जाए,
मैं देख रहा हूं कि रोहित जो है अपना अर्धशतक बना चुके हैं।
जी देखिए, रोहित शर्मा आउट होकर पवेलियन भी लौट चुके हैं, वो जेपी डुबनी की गेंद पर कॉटन बॉल हुए और आपने ठीक कहा कि उन्होंने अपना शतक बनाया, 74 गेंदों का सामना करते हुए 65 रन बनाए। फिलहाल भारत का स्कोर थोड़ी देर पहले 138 रन था 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 28वां ओवर प्रगति पर है। विराट कोहली 37 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका साथ दे रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। हालांकि ये समझ में नहीं आया कि अजिंक्य रहाणे जिन्होंने पिछले 2 मैचों में अर्धशतकीय पारियां खेली, नंबर 1 डाउन पर आते हुए यानी कि नंबर 3 जिसे कहा जाता है उनकी जगह विराट कोहली को भेजा गया, धोनी खुद ऊपर बल्लेबाजी करने आ गए हैं। लेकिन अशोक जी, यहाँ पर क्रिकेट से हटकर एक समाचार और जो थोड़ा सा निराशाजनक हो सकता है भारतीय खेल प्रेमियों के लिए, लेकिन खेल है, डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में भारत की पीवी सिंधु चीनी दीवार नहीं तोड़ सकी और जुई रुई ली से हार गई। इस फाइनल मुकाबले में चीन की जुई रुई ली ने गैर वरीयता हासिल पीवी सिंधु को 21-0 से 21-12 से हराया। ली ने फाइनल मुकाबला केवल 47 मिनट में अपने नाम किया। और अगर टेनिस की बात की जाए तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल अपने नाम किया। आज खेले गए फाइनल में उन्होंने फ्रांस के जो विल्फ्रेड सोंगा को 6-2, 6-4 से हराया।
जी, इसके अलावा मैं एक खबर देख रहा हूँ bbchindi.com पे कि 2 साल बाद लौटेंगी IPL में चेन्नई और राजस्थान की टीमें। आज कुछ अहम बैठक में ये फैसला लिया गया है।
देखिए, दरअसल जो इस तरह से IPL 7 में स्पॉट फिक्सिंग और दूसरी तरह के मामले चल रहे थे, तो जिस तरह से नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ BCCI के, तो उनका सोचना यही था कि जितने भी विवादित मुद्दे हैं उन्हें जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए। IPL एक बड़ा टूर्नामेंट है और उसके बाद जो जाँच कमेटी का गठन किया गया था उसका ये कहना था कि इन टीमों के अधिकारी और खिलाड़ी जिस तरह से स्पॉट फिक्सिंग में कथित रूप से शामिल रहे हैं उसे देखते हुए इन पर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया जाए, तो उसी दिशा की तरफ बढ़ते हुए आज BCCI ने अपनी अहम मीटिंग की। लेकिन अब देखना यह है कि IPL का भविष्य क्या होगा, क्योंकि जो इसका स्पॉन्सर है एक बहुत बड़ी कंपनी है,
चीनी
वो हटना चाहती है।
अब एक चीनी कंपनी की स्पॉन्सर बन के आ रही है, कहा गया है कि वाइबो जो मोबाइल कंपनी चीन की है वो पेप्सी के बाद अब IPL के नए स्पॉन्सर हैं।
तो कुल मिला के जो BCCI है उसके सामने अभी काफ़ी समस्याएं हैं और अब देखना ये होगा कि किस तरह से इन चुनौतियों से पार पाती और उन खिलाड़ियों को क्या होगा जो इन दोनों टीमों के लिए खेलते रहे।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदेश जी तमाम जानकारी के लिए।
दुनिया की बड़ी खबरें BBC के साथ सोमवार से शुक्रवार देखिए TV पर BBC दुनिया, ETV नेटवर्क के हिंदी और उर्दू के सभी चैनलों पर।
नमस्कार, स्वागत है आप सबका, यह है BBC दुनिया, मैं हूँ सुमिरन प्रीत कौर।
यहाँ आकर वो लोगों को गले लगाते हैं और कहते हैं हम अब आजाद हैं,
उससे बात करने में बहुत मजा आता है,
तो देखना मत भूलिए BBC दुनिया शाम 9:20 पर ETV के साथ साथ bbchindi.com और BBC हिंदी के YouTube चैनल पर भी। BBC दुनिया।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर, मिस्र में आज नई संसद को चुनने के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वहां 3 साल में होने वाले ये पहले चुनाव हैं। पिछली संसद को 2012 में एक अदालती आदेश के बाद भंग किया गया था। अधिकारी इसे मिस्र में लोकतंत्र की तरफ अहम और निर्णायक कदम मान रहे हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि चुनाव में शामिल ज्यादातर उम्मीदवार राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल-सीसी के समर्थक हैं और नई संसद उन्हीं की ताकत को मजबूत करेगी। BBC संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए अजय शर्मा से।
2 साल पहले पूर्व सेना प्रमुख अब्दुल फतह अल-सीसी के सत्ता संभालने के बाद ये मिस्र में पहले संसदीय चुनाव हैं। 2 चरणों में होने वाले इस चुनाव में मतदाता संसद के 596 सदस्यों को चुनेंगे। इसके लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं और लगभग 1,85,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। राष्ट्रपति अल-सीसी ने टीवी पर अपने संबोधन में लोगों से भारी संख्या में मतदान करने को कहा है। एक अरसे बाद हो रहे इन चुनावों को लेकर कई मतदाताओं में उत्साह भी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोग बड़ी संख्या में मतदान करेंगे, ये हमारा फर्ज है जिसे हमें अपने और अपने बच्चों के भविष्य की खातिर पूरा करना है। हर किसी को देश की खातिर वोट देना चाहिए ताकि हम संसद चुन सकें जो सरकार के कामकाज पर नजर रखे। ये लोकतंत्र की तरफ हमारा अंतिम और निर्णायक कदम है। इससे पहले हमने अपने राष्ट्रपति और संविधान के लिए वोट दिया है। ये थे कुछ मतदाताओं के शब्द। उधर युवा मतदाता चुनाव को लेकर उदासीन बताए जाते हैं, इसलिए मतदान का प्रतिशत कम रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। बहुत से लोग सरकार और उसकी नीतियों से खुश नहीं हैं और देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उनका मोह भंग हो चुका है। पिछले चुनावों में लगभग आधी सीटें जीतने वाली मुस्लिम ब्रदरहुड को इन चुनावों से दूर रखा गया है। इस इस्लामी संगठन को अब न सिर्फ प्रतिबंधित कर दिया गया है बल्कि इससे जुड़े कई नेता जेलों में बंद हैं, जबकि कईयों को मौत की सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड के ही मोहम्मद मुर्सी मिस्र में हुई क्रांति के बाद देश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे, लेकिन फतह अल सीसी ने उन्हें 2013 में सत्ता से बेदखल कर अपने हाथ में देश की बागडोर ले ली। बीबीसी संवाददाता का कहना है कि चुनावों के बाद जो संसद अस्तित्व में आएगी वो राष्ट्रपति अल सीसी की ताकत में ही इजाफा करेगी।
ये थी अजय शर्मा की रिपोर्ट जो आपको सुना रहे थे बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार। और अब हमारी खास पेशकश फैलाऊ जियारा, जो प्रोफेसर सुनील खिलनानी की श्रृंखला इनकार्नेशंस का हिंदी रूपांतरण है। इस कार्यक्रम की 15वीं कड़ी में आज बात होगी मीराबाई की और प्रस्तुति है मोहनलाल शर्मा की।
उत्तर भारत में वसंत की मादकता होली में अपने चरम पर होती है। होली का त्योहार गांवों शहरों की गलियों में पूरे उत्साह से बेरोक टोक मनाया जाता है। हर जगह पानी की बौछारें, एक दूसरे पर गुलाल उड़ाते बच्चे और भीगे हुए कपड़ों में हुल्लड़ मचाते लोग, यही नजारा आम है। जहां कुछ लड़कियों के लिए होली बराबरी का मौका है, एक ऐसा दुर्लभ अवसर जब वो लड़कों के साथ मुक्त भाव से खेल सकती हैं, वहीं कुछ लड़कियों को होली के नाम से डर लगता है। उनके लिए होली एक ऐसा त्यौहार है जो छेड़छाड़ करने वाले लड़कों को शह देता है। स्त्री पुरुष संबंधों के लिहाज से होली उन्मुक्त भावनाओं का पर्व है। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की आवाज में 1980 के दशक के मशहूर फिल्मी गीत रंग बरसे में होली के अनुभव की बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति हुई है।
सोने की थारी में जो ना परोसा, पर खाए गोरी का यार बलम तरसे रंग बरसे।
कई और हिंदी फिल्मी गीतों की तरह ही इस मशहूर गीत के बोल भी सांकेतिक हैं। गीत एक खूबसूरत स्त्री के बारे में है जो होली के रंगों में सराबोर है और किसी पर पुरुष से प्रेम करती है। प्रेम में धोखा हिंदी गीतों का बेहद आम विषय है, लेकिन इस गीत को खास बनाती है वो दृढ़ इच्छा शक्ति वाली स्त्री जिससे प्रेरित होकर ये गीत लिखा गया। फिल्म के गीतकार ने इस गीत को 500 साल पहले जन्मी मीराबाई पर रचे गए एक सदियों पुराने गीत के आधार पर लिखा था। मीराबाई आध्यात्मिक प्रेम और लगन के गीत गाने वाली 16वीं सदी की एक रहस्यवादी कवित्री थी, जिनकी गणना आज भारत के महान संतों में की जाती है। मीराबाई का जन्म उत्तर भारत के एक कुलीन और रूढ़िवादी राजपूत समुदाय में हुआ था। जब विद्रोही मीरा के परिवार ने उनकी धार्मिक आकांक्षाओं के दमन का प्रयास किया तो मीरा ने अपने कुल खानदान और जाति को ही त्याग दिया। मीरा ने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया और गली गली कृष्ण धुन गाती, नीची समझे जाने वाली जातियों के लोगों के साथ मेल मिलाप करती भटकने लगी। वो भक्ति परंपरा की नायिका बन गई। भक्ति परंपरा में ईश्वर के प्रति समर्पण के लिए पुजारियों, कर्मकांडों या मंदिरों जैसे धार्मिक आडंबरों की कोई जरूरत नहीं, बस ईश्वर से प्रेम होना चाहिए और अर्पण के लिए एक फूल, एक फल या कोई भजन ही बहुत है। अपने जीवन काल में मीराबाई ने सैकड़ों गीत रचे। जैसे जैसे मीरा की ख्याति बढ़ती गई वैसे वैसे इन भजनों में भी नई कड़ियां जुड़ती गईं और आज मीरा के नाम से करीब 5000 भजन प्रसिद्ध हैं। वेंडी डोनिगर शिकागो विश्वविद्यालय में धर्मों के इतिहास की प्रोफेसर हैं।
She's a woman, and there have not been that many important women in Indian religion.
मीरा एक महिला थी और भारतीय इतिहास में धर्म के क्षेत्र में बहुत कम स्त्रियों को इतना महत्व मिला है। प्रारंभ में स्त्रियों को संस्कृत सीखने और बोलने की अनुमति नहीं थी। पुरुषों द्वारा लिखे गए धार्मिक ग्रंथों में स्त्रियों का उल्लेख तो बहुत है, लेकिन स्त्री के अपने स्वर में उसके अपने सुख दुख की अभिव्यक्ति बहुत कम है। मीराबाई के गीतों में पहली बार एक स्त्री की स्पष्ट और बुलंद आवाज सुनाई देती है।
बहुत कम लोगों का भारतीय जनमानस पर वैसा प्रभाव पड़ा है जैसा मीराबाई का। महात्मा गांधी भी उनके प्रशंसक थे। वो कहते थे कि मीरा के भजन उन्हें असीम आनंद से भर देते हैं। उनके गीतों में बनावट बिल्कुल नहीं है। अपने गीतों में मीराबाई जिस प्रिय की कामना करती हैं, वो हैं उनके आराध्य श्री कृष्ण। जब भारत के किसी गांव में मीरा के भजन गाए बजाए जाते हैं तो मीरा केवल ईश्वर भक्ति की ही प्रतीक लगती हैं। लेकिन इतिहास में मीरा और भी कई कारणों से महत्वपूर्ण है। वो जातिगत ऊंच नीच का विरोधी स्वर भी है और क्रांतिकारी स्त्रीवाद का प्रतीक भी। आखिरकार मीरा के जीवन की मूलभूत चुनौती तो यही थी कि अपनी चुनी राहों और लक्ष्यों को हासिल करने में बाधक रूढ़िवादी सामाजिक अपेक्षाओं से कैसे पार पाया जाए। अन्य विभूतियों की तरह ही मीरा के जीवन के बारे में भी बहुत अनिश्चितताएं हैं, लेकिन ये एक ऐतिहासिक सच है कि उनका जन्म राजसी राजपूत वंश में हुआ। राजस्थान की मरुभूमि में अपना आधिपत्य जमाने के लिए राजपूत वीर हमेशा युद्ध करते थे। इसी मरुभूमि में मीरा के दादा ने एक राज्य की स्थापना की। मीराबाई शायद अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनके पिता 12 गांवों की एक छोटी सी रियासत के राजा थे। कहा जाता है कि मीरा बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब वो 4 या 5 साल की थी, एक रमता जोगी उनके घर आया। उसने मीरा को भगवान कृष्ण की एक मूर्ति दी। मीरा ने नटखट किशोर कृष्ण की इस मूर्ति से ऐसा अपनापन बांधा कि मीरा की माँ उन्हें चढ़ाती और कहती कि कृष्ण ही तेरे दूल्हा हैं, और मीरा के लिए ये मजाक सच हो गया। बचपन में ही मीरा की माँ की मृत्यु हो गई और गिरधर के प्रति मीरा का समर्पण भाव और भी बढ़ गया। वो कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हो गई कि उन्हें अपने होने का भान न रहा और भक्ति के उन्माद में वो पुरुषों से व छोटी जाति के लोगों से मिलने जुलने लगी। यकीनन मीरा के इस आचरण से परिवार की बदनामी होने लगी। राजपूत स्त्रियों को कड़े पर्दे में रहना होता था और पुरुषों से मेलजोल की मनाही थी, लेकिन मीरा की आध्यात्मिक लगन ये बंधन भला कहां मानने वाली थी। उनकी शादी एक राजपूत राजकुमार एक राणा से कर दी गई। राजपूतों में रिवाज था कि राजनीतिक मैत्रियों को मजबूत करने या युद्ध टालने के लिए भी वैवाहिक संबंध बनाए जाते थे, लेकिन मीरा का विवाह उनके अपने परिवार में ही शांति कायम नहीं कर पाया। बहुत जल्द मीरा के पति की मृत्यु हो गई। शायद उन्हें जहर दिया गया था। मीरा के पिता की भी मौत हो चुकी थी। अब मीरा अपनी दकियानूसी ससुराल के अधीन थी। वो गाती हैं, पहरो भी राख्यो चौकी बिठारियो तालो दियो जड़ाए। मीरा के ससुराल वाले मीरा से पहले ही नाराज थे। मीरा राजपूती परंपरा के मुताबिक अपनी पति की चिता पर जलकर सती नहीं हुई। उनके भजनों के अनुसार उनसे नाराज ससुरालियों ने उन्हें मारने के लिए जहरीला नाग भेजा। कहा जाता है कि मीरा ने उस नाग को शांत किया और अपने गले में हार की तरह पहन लिया। परिता मुक्ता इतिहास की अध्येता हैं। उन्होंने मीराबाई से जुड़ी विभिन्न कथाओं और राजपूतों के बीच वैर या बदले की परंपरा का अध्ययन किया है।
I think the very fact that Mira survived says so much about her.
मेरा मानना है कि मीरा का जीवित बचपाना ही उनके बारे में बहुत कुछ कहता है। मीरा राजस्थान में प्रचलित वैर की परंपरा के विरुद्ध खड़ी हुई। राजपूतों का चलन वैर और द्वेष की भावना से संचालित होता रहा है। जब छोटे राजपूत सामंत बड़े राजपूत राजाओं की अधीनता स्वीकार करते तो उन्हें अपने घर की बेटियाँ भी विवाह में उन्हें देनी पड़ती थी। मीरा इस नफरत और आधिपत्य की राजनीति के खिलाफ थी।
मीरा ने अपने समुदाय के हमलों का जबरदस्त विरोध करते हुए गाया था, या बदनामी लागे मीठी। राजघराने में जन्म लेने के कारण उन्हें जो विशेषाधिकार मिले थे वो उन्हें बंधन लगने लगे। उन्होंने ये बंधन तोड़ डाले। वो हर स्तर के लोगों से मिलने जुलने लगी, फिर चाहे वो अछूत हों, चमड़े का काम करते हों या फिर जुलाहे हों। उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और घूम घूम कर अपने भजन गाने लगी। उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई और जल्द ही वो सामाजिक बंधनों की मुखालफत करने वाले सशक्त आंदोलन की नेत्री बन गई। भारत में मुस्लिम शासन के दौरान हिंदू रूढ़ियों की जकड़ कमजोर हुई और पूरे भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसने जातिगत ऊंच नीच पर सवाल खड़े किए। भक्ति की समतावादी भावना की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई और धीरे धीरे उत्तर भारत में फैल गई। राजस्थान में ये आंदोलन 14वीं शताब्दी में पहुंचा, लेकिन ये भी एक विरोधाभास है कि जहां भक्ति मार्ग में हर मनुष्य को ईश्वर से स्वयं निजी संबंध स्थापित करने होते हैं, वहीं भक्ति सबसे ज्यादा प्रभावशाली तभी लगती है जब लोग समूह में गाते बजाते हैं। परिता मुक्ता ने उदयपुर के दलित समुदाय के बीच ये रिकॉर्डिंग की है।
There is real power in song. There is real power in collective singing.
समूह में गाने से सचमुच एक शक्ति, एक नई ऊर्जा मिलती है जो नया जोश जगाती है। वास्तव में इससे इंसान की पूरी हस्ती का ही विकास होता है और पूरे समुदाय को ऊर्जा मिलती है ताकि वो अपने अस्तित्व और विकास के लिए बेहतर विकल्प, बेहतर उपाय तलाश सके।
अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल।
संग छोड़ो ये लाजे थारो मेड़ तो मेवाड़ लाजे।
आज जब गांवों में और शहर की झुग्गी बस्तियों में मीरा के भजन गाए बजाए जाते हैं तो कई बार सत्ताधारी संभ्रांत वर्ग के विशेषाधिकारों के खिलाफ संगीतबद्ध विरोध का रूप ले लेते हैं। समाज के निचले पायदान पर होने की वजह से जो अपमान झेलना पड़ता है वो इन गीतों में बहुत मुखर हो उठता है और भक्ति का आवेग तो बढ़ता ही है, लेकिन पारंपरिक जीवन और उसमें स्त्रियों के लिए तय प्रतिबंधों को मीरा ने जिस तरह से नकारा था उसका जिक्र आज भी बहुत कम होता है। ऐसा इसलिए कि आज भी भारतीय समाज में युवतियों से अपेक्षा की जाती है कि वो परिवार के लिए अपनी आकांक्षाओं की बलि चढ़ा देगी। इसलिए आपको मीरा के ऐसे कई पोस्ट कार्ड और चित्रकथाएं दिख जाएंगी जिसमें वो मुग्ध भाव से नृत्य कर रही हैं। लेकिन भारतीय स्त्रीवादियों की प्रिय, स्त्रियों के लिए बनाई गई रूढ़ियों को तोड़ने वाली क्रांतिकारी और कई बार बेहद तीखे सवाल उठाने वाली मीराबाई अब भी समाज में लोकप्रिय नहीं है। फिर भी मीरा और भक्ति परंपरा को ज्यादा व्यापक मायने देना आज की समानता की अवधारणा को पूरी तरह से उस पर आरोपित कर देना गलत होगा। वेंडी डोनेगर कहती हैं,
The stories about who she was and what she did, that pure hagiography.
मीरा के व्यक्तित्व और उनके काम से जुड़ी सारी कहानियों में वे आदर्श की मूर्ति हैं। और जहां तक मेरी समझ है बॉलीवुड को उनकी ये छवि पसंद है, लेकिन एक बात तो साफ है कि अलग अलग पीढ़ियों के लिए मीरा होने के मायने अलग अलग हैं।
आइए सुनते हैं कि राजस्थान के लोगों की नजर में मीरा क्या है।
मीराबाई वाज फ्रीडम फाइटर।
मीराबाई वाज अ डिसिपल ऑफ कृष्णा।
कृष्णास लवर।
आई डोंट नो, आई डोंट स्टडी हिस्ट्री।
तो मीरा के किस रूप को लिया जाए? मेरे ख्याल से ये वैसा ही सवाल है जिससे हमने बात शुरू की थी कि होली को क्या समझा जाए। होली का आपका अनुभव इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कौन हैं या आपके पास कितनी ताकत है। इसी तरह का सवाल है कि मीरा को क्या समझा जाए। क्या मीरा भावुक धार्मिक भावनाओं की प्रेरक हैं या वो जाति विरोधी और विभिन्न जातियों के बीच मैत्री का प्रतीक हैं, या फिर वो विद्रोह जगाता एकाकी नारी स्वर हैं, या फिर भक्ति संत हैं। इतिहास इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, इसलिए अच्छा यही है कि मीरा जैसी स्वतंत्र चेता नारी के संबंध में हम अपनी स्वतंत्र राय खुद बनाएं।
कोई निंदो कोई बिंदो, महे तो गुण गोविंद का गास्या, जिन मारण वे संत गया छे उन मारण महे जास्या।
ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और अब सभा के समापन से पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार। दिल्ली पुलिस ने नांगलोई में नाबालिग बच्ची से सामूहिक बलात्कार के मामले में दो किशोरों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद खून से लथपथ दो साल की बच्ची पास के पार्क से मिली थी। उत्तरी फिलीपींस में चक्रवाती तूफान कोप्पू के कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं और हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। तूफान की वजह से अब तक एक व्यक्ति की मौत की खबर है। पटेल समुदाय के नेता हार्दिक पटेल की भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे को बाधित करने की चेतावनी के बाद गुजरात पुलिस ने उन्हें एहतियात के तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। बीबीसी समाचार।
तो अभी के लिए कार्यक्रम में इतना ही। छोड़ जाते हैं आपको एक खबर के साथ जो इस वक्त bbchindi.com की टॉप खबर है। मुनव्वर राणा ने भी लौटाया साहित्य अकादमी पुरस्कार। मुनव्वर राणा उर्दू के शायर। आपसे मिलेंगे ठीक डेढ़ घंटे बाद कार्यक्रम घटना चक्र में। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। अशोक कुमार को अनुमति दें। नमस्कार।